Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, we are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmananda Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Rai aur Pran, ye dono saath saath utpann hue mithun hai, to dono bhi purna hai. Isliye purna madaha, purnamidam. पूर्णात् पूर्णम उदच्यते कहा जाता है ना, पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न हुआ. सिंह के दो बच्चे हो जाए, चार बच्चे हो जाए, ये नहीं कि एक सिंह रहेगा और बाकी भेड़ होंगे. वो सिंह के जितने भी बच्चे होंगे वो सब के सब सिंह ही होंगे. ऐसे सर्वात्मा हिरण्यगर्भ के शुरू में मिथुन अंतपाती दो कार्य हुए, वो भी सर्वात्मा है. उनकी सर्वरूपता को बताया गया पंचम तथा षष्ठ कंडिका के माध्यम से, और सप्तम कंडिका में सूर्य का ये सर्वरूप कैसे हैं इसे स्पष्ट किया जा रहा है कि स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणो अग्नि उदयते. तो स एषः यानी ये जो दसों दिशाओं में अपने सूर्य किरणों के माध्यम से व्याप्त होकर के सारे संसार को आत्मसात करने वाला सूर्य मिथुनांतपाती प्राण, वह वैश्वानर है. हाँ, और अब इसी प्राण को कहा जा रहा है वैश्वानर. स एष वैश्वानर, तो स एष यानी ये सर्वात्मा जो प्राण है वही वैश्वानर है. वैश्वानर है का अर्थ है विश्वे च ते नराश्च इति विश्वानरा. नर शब्द का अर्थ है जीव, नर याने जीव और विश्व याने सभी. तो विश्वे च ते नराश्च इति विश्वनरा, इस शब्द का अर्थ होता है सभी जीव. और स्वार्थ में एक प्रत्यय संस्कृत में करके अण प्रत्यय वैश्वानर शब्द बनेगा तो उसका अर्थ निकलेगा समष्टि जीव, समस्त जीवात्मक. वैश्वानर समष्टि जीवात्मक. हाँ, तो ये एक जीववाद के अनुसार वस्तुतः एक ही जीव है और वो है हिरण्यगर्भ, और बाकी आप हम है? आप हम समष्टि है, हम लोग जीव है ही नहीं. हम हैं जीवाभास और जीव तो एक ही है. वो है जो प्रजापति कहा रई और प्राण का उत्पादक, वही एक वस्तुतः जीव है, वही भोक्ता है और उसी के भोग के लिए ये सारा संसार बना है. तो हम तो उसके भोग्य हैं, इसलिए अन्न है, जीवाभास है. जैसे आपके अपने एक शरीर में कितने जीव हैं जिसमें अभिमान आप कर रहे हैं, लेकिन आप मान लेते हैं मैं अकेला ही हूं, मैं ही हूं. और इसके अंदर के जो सारे जीव हैं वो जीव यदि आपके खून में न रहें तो आपका जीवित रहना मुश्किल हो जाए. इसलिए आपके एक प्रकार से वे भोग्य हैं, आपके अहंता से अलग उनका कोई अस्तित्व तो नहीं है, इसलिए उसकी गिनती नहीं की जा सकती की जाती है. एक शरीर है हमारे दृष्टि में जो, उसमें एक जीव. हिरण्यगर्भ आपके हमारे सब शरीरों को देखता ही नहीं है। जैसे हमारे दृष्टि में हमारे खून के अंदर की लाल पेशी सफेद पेशी के जो शरीर हैं और वे जीव हैं, वे कभी हमारे दृष्टि में आते ही नहीं है, हम ही हम हैं। ऐसे हिरण्यगर्भ को पूछो तो हिरण्यगर्भ को वही वो दिखता है, उससे अलग दूसरा कोई नहीं दिखता। जैसे लाल पेशी सफेद पेशी हमारे अंदर होते हुए भी हम अपने से अलग उनकी गिनती नहीं करते हैं, ऐसा एक ही जीव है और वो है हिरण्यगर्भ। वैसे ही शरीर में एक जीव माना जाता है अपने आप को, ऐसे पूरा संसार जो है एक शरीर है विराट का, विराट नामक है, और उसमें एक जीव है वो हिरण्यगर्भ कहो और उसी का भोगायतन ये विराट है, तब उसका नाम वैश्वानर होता है। केवल जैसे आपके भी तीन नाम है ना, जागृत अवस्था में आपका नाम है विश्व, स्वप्न अवस्था में तेजस और सुसुप्ति अवस्था में प्राज्ञ और चतुर्थ अवस्था में तुरीय। तुरीय उचेतन है, शिव स्वरूप है। तो ये जो है तीन नाम उपाधि को लेकर के जैसे आपके हैं, ऐसे हिरण्यगर्भ के भी समष्टि सूक्ष्म शरीर को लेकर के हिरण्यगर्भ का नाम है हिरण्यगर्भ, समष्टि बुद्धि रूप उपाधि को लेकर के, और फिर उस बुद्धि का भोगायतन एक गोलक होना चाहिए ना, वो स्थूल शरीर हिरण्यगर्भ का स्थूल शरीर कौन है, ये ब्रह्मांड। जैसे हमारा ये स्थूल शरीर है जागृत अवस्था में, ऐसे हिरण्यगर्भ का स्थूल शरीर है ब्रह्मांड, और उस ब्रह्मांड में जब अभिमान कर लेता है तो वैश्वानर विराट ये सब नाम हो जाते हैं हिरण्यगर्भ की, ये नाम हो जाते हैं। और हिरण्यगर्भ के शरीर में हम सब हैं, सूत्रात्मा जब प्राण प्रधान मानते हैं, प्राण रूप उपाधि को प्रधानता देते, क्रिया शक्ति प्राण को प्रधानता देते हैं, तो सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ को ही सूत्रात्मा कहते हैं। और ज्ञान शक्ति बुद्धि रूप उपाधि की प्रधानता को लेकर के हिरण्यगर्भ, और स्थूल उपाधि भी साथ में आ जाती है, वो प्राण और बुद्धि के साथ साथ को विराट वैश्वानर ये नाम आ जाता है। तो ये वैश्वानर है, ये कौन, प्राण आदित्य, ये वैश्वानर है का अर्थ है समष्टि जीव रूप है, सर्व जीवात्मक है, उसकी सर्वरूपता का वर्णन करना है ना, इसलिए यहां पर वैश्वानर शब्द से बताया जा रहा है सर्वभोक्ता रूप, सर्वभोक्त्री रूप जीव, ये हिरण्यगर्भ है यानी प्राण है मिथुनंतपाती। और विश्वरूप, विश्वरूप शब्द से बताया जा रहा है भोग्य प्रपंच रूप, अन्न रूपता, सर्वरूपता बतानी है ना प्राण में, जैसे रई को सर्वरूप बताते समय मूर्त अमूर्त उभय रूप बता, और जब अलग कर दिया तो अमूर्त को अत्ता और मूर्त को अन्न, ऐसे अत्ता जो प्राण है इसे भी सर्वरूप बताते समय अन्न रूप भी दिखाना है, समस्त प्रपंच रूप भी दिखाना है, तो विश्वरूप, विश्वरूप से लेना समस्त प्रपंच रूप, यानी दो है, भोक्ता की प्रधानता को लेकर के वैश्वानर शब्द का प्रयोग होगा, भोग्य की प्रधानता को लेकर के उसे ही विश्वरूप भी बताया जाएगा। और कौन है तो कहते स एष प्राण, ये प्राण है, इसी को अग्नि यानी अत्ता भी कहा जाता है, ये प्राण अग्नि अत्ता है, और उदयते, उदयते यानी ये सारे संसार को आत्मसात करता हुआ प्रतिदिन उदित होता है। उदित होता है यानी हमारे चक्षु इंद्रिय का विषय बन जाता है, हमारे चक्षुर्गोचर हो जाता है। इस प्रकार ये छठवीं कंडिका और सातवीं कंडिका के इस वाक्य के द्वारा बताया गया मिथुन अंतपाती प्राण का सर्वरूपत्व। अब सर्वरूप क्यों बताया, उसे हिरण्यगर्भ रूप दिखाने के लिए, प्रजापति रूप दिखाने के लिए, कारण से अभिन्न दिखाने के लिए। ये सब जो चर्चा कर रहे हैं जिस प्रश्नोपनिषद के वाक्यों की, ये वाक्य हैं, वेद दो भागों में विभक्त है ना, मंत्र ब्राह्मण, तो ये वाक्य हैं ब्राह्मण भाग के, प्रश्नोपनिषद ब्राह्मण भाग की है। और कहीं कहीं ब्राह्मण भाग के द्वारा उक्त अर्थ को ब्राह्मण वाक्य मंत्र के द्वारा प्रमाणित करता है, यानी मंत्र का भी ब्राह्मण वाक्य के द्वारा उक्त अर्थ में समर्थन है, ये बताता है। तो आदित्य सर्वरूप है इसे बताने वाला ब्राह्मण वाक्य हुआ छठवीं कंडिका और सातवीं कंडिका का ये वाक्य। इसमें प्रमाण के रूप में बताया जा रहा है मंत्र को ब्राह्मण भाग के द्वारा, और उस मंत्र का अवतरण ब्राह्मण वाक्य है तद एतद ऋचा अभ्युक्तम। तद एतद शब्द का अर्थ है आदित्य की यानी प्राण की सर्वरूपता, जो हिरण्यगर्भ के द्वारा उत्पन्न किया गया मिथुन और उस मिथुन अंतपाती प्राण वह सर्वरूप है। इस अर्थ को ब्राह्मण भाग ने बताया, वह केवल ब्राह्मण वाक्य मात्र आदित्य के सर्वरूपता को बताता है ऐसी बात नहीं है, आदित्य की सर्वरूपता मंत्र भी बताता है, मंत्र के द्वारा भी आदित्य के सर्वरूपत्व का वर्णन हुआ है, ऐसा इस वाक्य का अर्थ निकलता है। तद एतत यानी आदित्य का सर्वरूपत्व, ऋचा अभ्युक्तम, इसमें ऋचा शब्द का अर्थ है मंत्र, तो मंत्र ने भी बताया है, मंत्र ने भी सूर्य के सर्वरूपता का वर्णन किया है। तो यही सूर्य के सर्वरूपता को बताने वाला मंत्र आठवां मंत्र है, इस प्रकरण में आठवां जो वाक्य है वो मंत्र है, अभी तक जो ब्राह्मण वाक्य ने बताया उसका समर्थन करने वाला। ये अपने द्वारा उक्त अर्थ को बताने वाले मंत्र को ब्राह्मण क्यों बताता है, इसलिए कि थोड़ा अध्ययन करने वाले के, ब्राह्मण का अध्ययन करने वाले के बुद्धि में दृढ़ विश्वास हो जाए, जो ब्राह्मण के द्वारा उक्त अर्थ है वो ऐसा ही है, इसके लिए ब्राह्मण मंत्र भाग का भी समर्थन बताएंगे। तो कई लोग एक ही अर्थ को बताएंगे तो नए नए लोगों की फिर पूर्ण आस्था बैठ जाती है ना, श्रद्धा हो जाती है। उसी दृष्टि से आदित्य की सर्वरूपता पूर्ण श्रद्धा के साथ स्वीकार करें इस उपनिषद के अध्येतागण, इस दृष्टि से मंत्र के द्वारा भी सर्वरूपता का समर्थन कराया जा रहा है। विश्वरूपम हरिणम जात वेदसम परायनम ज्योतिरेकम तपन्तम सहस्ररश्मि शतधा वर्तमान प्राण प्रजानाम उदय तेश सूर्य। तो इसमें ये बताया गया मंत्र के पूर्वार्ध में कि ये सूर्य विश्वरूप है यानी सर्व प्रपंचात्मक है, ब्राह्मण भाग में भी ईश्वरूप पद आया था, उसका अर्थ था सर्व प्रपंचात्मक यानी भोग्य जगत रूप। ऐसे यहां पर भी वही शब्द है विश्वरूपम, वहां केवल प्रथमांत था, यहां द्वितीयांत है विश्वरूपम, आदित्य का ही विशेषण है। और ये बताया जा रहा है कि जो सूर्य उपासक है, प्राण उपासक है, आदित्य उपासक है, वे आदित्य का चिंतन करते, उपासना है चिंतन। और कैसा चिंतन करते हैं कि आदित्य को केवल आंख से दिखने वाला जो प्रकाश है अंतरिक्ष में, एक प्रकाश पुंज है, उस प्रकाश पुंज मात्र रूप से नहीं देखते हैं, अपितु केवल प्रकाश पुंज के रूप में आदित्य का चिंतन न करके, उपासना न करके, वो विश्वरूपम यानी समस्त प्रपंच आदित्य है, सूर्य है, और वो सूर्य मैं हूं, ऐसी प्राण की अहंग्रह उपासना करते हैं। ये मंत्र कह रहा है कि जो आदित्य उपासक हैं वे विश्वरूपम आदित्यम उपासते, ऐसा लगाना कि आदित्य की उपासना करते हैं, आदित्य को केवल एक प्रकाशक, प्रकाश का पुंज और प्रकाश से जगत को उससे अलग देखते हो, ऐसा नहीं, वो देखते हैं कि सर्वरूप है आदित्य, विश्वरूप है, और वो आदित्य मैं हूं, विश्वरूप आदित्य, ऐसी आदित्य की अहंग्रह उपासना करते हैं, जिस आदित्य की, वह आदित्य सर्वरूप है, ऐसा समझना। और वो कैसा है तो कहते हरिणम, हरिण किसको कहते हैं, हरिण मृग, हिरण, वही मृग हिरण। तो एक हरिण शब्द तो प्रसिद्ध है हिंदी में, उसके लिए मृग के लिए वो अलग बात, लेकिन ये तो संस्कृत में है ना वेद, तो हरिण शब्द का अर्थ है किरणों वाला, हरि शब्द का अर्थ है किरण रश्मि, और न शब्द वाला अर्थ में है, हरिण शब्द का अर्थ है रश्मि वाला, किरणों वाला, जिसकी अनेकों किरणें हैं, दसों दिशाओं में व्याप्त होती हैं उदित होते ही, वह रश्मि वाला। तो अनेकों रश्मि वाला सूर्य मैं हूं, ऐसा चिंतन करते हैं। और जात वेदसम, जात वेदसम में वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, और जात का अर्थ है कार्य, जात यानी कार्य, जातम जातम व्यक्ति असो जात वेदा। तो जो ओ समस्त कार्य को जाने, समस्त कार्य का ज्ञान रखे, जिससे अज्ञात कोई भी न हो, सबका जिसको ज्ञान है, सर्वज्ञ है, कार्य मात्र को जानने वाला, संसार में ऐसी कोई भी वस्तु न हो जिससे अज्ञात है, उसे जात वेदा कहते हैं। जातम जातम वेत्ति असो जात वेदा, और तम जात वेदसम का अर्थ निकलेगा सर्वज्ञ, संसार के कार्य मात्र को जानने वाला, उससे कोई छिप नहीं सकता, वो सबको जानता है। तो जात वेदसम यानी जात वेदा सूर्य मैं हूं, सबको जानने वाला। और परायणम यानी समस्त प्राणियों का आश्रय, परायण है वो, और ज्योतिरेकम तपंतम, और जो सबको प्रकाश कर रहा है और अग्नि रूप है, क्या मतलब उष्ण रूप है, सबको प्रकाशित कर रहा है ज्योति स्वरूप होने से, और उष्णता न हो तो जीवन नहीं चलेगा। उत्पन्त यानी शक्ति दे रहा है सबको, यही एक बड़ी शक्ति है, पावर है, ऊर्जा है सूर्य। अब तो सौर ऊर्जा के ओर ही दौड़ रहे हैं ना, कोयला पानी जो पृथ्वी पर थे ऊर्जा के साधन, वो तो लगभग खत्म से है। और ये सूर्य में कहते हैं ऊर्जा कई अरब वर्षों तक आपको 2400 घंटे पूरे विश्व को ऊर्जा यानी विद्युत देने का सामर्थ्य है, इतनी ऊर्जा है उसमें सूर्य में। जिस दिन सूर्य की एनर्जी समाप्त होगी ना, उस दिन फिर महाप्रलय होना है, क्योंकि जब हाँ हिरण्यगर्भ की आयु समाप्त हो जाएगी उस दिन। ये मिथुन अंतपाती जो प्राण है वही तो सूर्य है, और ये सूर्य से ही सारा जगत बना है, वो हिरण्यगर्भ बना रहे जगत को सूर्य को माध्यम बना करके, इन सूर्य और चंद्रमा को माध्यम बना करके। तो उस दिन फिर ईश्वर की प्रथम संतान जो हिरण्यगर्भ है उनकी आयु समाप्त हो जाएगी, जब सूर्य की एनर्जी खत्म हो जाएगी, तब तक ये संसार रहेगा, प्रलय नहीं आएगा तब तक, वो रहना है वो, क्योंकि पहले से ही उनका प्रारब्ध इतना बना ही हुआ है। और ये वैज्ञानिक कह रहे हैं कि कई अरब वर्षों तक सूर्य में पूरे विश्व को एनर्जी देने का सामर्थ्य है, इसलिए कई अरब वर्षों तक अभी प्रलय पूरे विश्व का नहीं होना है। तो वो तपंतम, ऐसा सूर्य जो उपास्य है उपासकों का, ऐसा जानते हैं जिस सूर्य को, वह सूर्य सहस्र रश्मि है यानी अनेकों रश्मि वाला है, और शतधा वर्तमान है यानी सारे प्रपंच के रूप में वही विराजमान है, और प्राण प्रजानाम, वो सारे प्रजा का प्राण है, आधार है, जीवन है, प्रजानाम प्राण है का अर्थ। और एष सूर्य उदेती, ये सूर्य प्रतिदिन सारे संसार को जीवन देता हुआ उदित होता है। एकाद महीने की छुट्टी सूर्य कर लें यदि तो नहीं करते, एक सेकंड भी देर नहीं करते अपने कार्य में, लगे रहते हैं। तो ये संसार तितर बितर हो जाए। हिरण्यगर्भ बनना तो अच्छा लगता है, आप लोगों को भी ये सब सुन करके किसी न किसी को इच्छा हो रही होगी कि हम भी बन जाए, लेकिन छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलेगी काम से, और वो कितने एक कल्प तक, संसार के प्रलय तक निरंतर काम करते रहना पड़ेगा। जितनी अधिक बड़ी पोस्ट होती है जिम्मेदारी भी उतनी अधिक होती है ना, उतना ही अधिक काम भी करना पड़ता है। तो सूर्य को भी कम काम नहीं करना पड़ता, हिरण्यगर्भ को पूरे संसार के अधिपति, एक दो चार सदस्य का परिवार चलाने के लिए कितना सब काम करना पड़ता है, तो पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। इसलिए जितना बड़ा बनने की, बड़ा बनना तो अच्छा लगता है लेकिन काम करना फिर पता चलता हिरण्य, शुरू में तो उसको जब हम जैसे ही थे हिरण्यगर्भ तो लगा होगा कि अच्छा है, बाद में फिर वो वहां पहुंचने के बाद हिरण्यगर्भ को भी लगता है जैसे यमराज जी ने नचिकेता को कहा, तुम मेरे से भी साधक अवस्था में ज्यादा बुद्धिमान निकले हो, साधक अवस्था में यदि मैं तुम्हारे जैसा होता तो ठीक होता, ये और मैंने तो साधक अवस्था में यमराज बनने के लिए संसार में कुछ न कुछ एक पद मिल जाए मुझे, इसके लिए अनुष्ठान किया और उस कर्म का अनुष्ठान करके भगवान की दया से संसार की व्यवस्था में मुझे ये याम्य पद मिल गया, मृत्यु का मंत्रालय मिल गया, और मैं तो तुम्हें अपने संकल्प से पूरे संसार का अध्यक्ष हिरण्यगर्भ तक बनाने के लिए तैयार था, लेकिन तुमने आत्मज्ञान के लिए नहीं लिया। यानी वहां पहुंचने पर उसकी निस्सारता ज्ञात होती है, उससे पहले नहीं, ये दिखाने के लिए ये वर्णन हो रहा है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही।